ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தசஸ்லோகி பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ விஷ்ணு வல்லபானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
வம்சீ விபூஷிதகராலவநீரதாபாத் பீதாம்பராந்தருணபிம்பலாதரோஷ்டாத் பூரணேந்துசுந்தரமுகாதரபிந்தநேத்ராத் க்ரேஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே. மமனபஜனசக்தி பாதயோஸ்தே நரக்தி நச விஷய விரக்தி த்யானயோகேன சக்தி இதி மனசி சதாஹம் சிந்தயன் ஆத்யசக்தே ருச்சிரவச்சனபுஷ்பை அர்ச்சனம் சஞ்சிரோமி. த்யாயே நித்யம் மகேஷம் ரஜதகிரிநிபம் சாருச்சந்திராவதம்சம் ரத்னாகல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவரா பீதியஸ்தம் பிரசன்னம் பதுமாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதமமரகணைர் வ்யாக்ரக்ரேத்தீம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகிலபயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம். ஓம் யோ ப்ரஹ்மாணம் விரதாதி பூர்வம் யோ வை வேதாங்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை தம் ஹ தேவமாத்ம புத்தி ப்ரகாஶம் முமுக்ஷுர்வை சரணமஹம் ப்ரபத்யே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் பத்ரம் நோ அபிவாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாத விரசிதா தசஸ்லோகீ ந பூமிர் ந தோயம் ந தேஜோ ந வாயுர் ந கம் நேந்திரியம் வா ந கேஷாம் சமூஹ அனைகாந்திகத்வாத் சுஷுப்தேகசித்தஸ் ததேகோ வசிஷ சிவ கேவலோஹம் ந வர்ணா ந வர்ணாஶ்ரமாசார தர்மா ந மே தாரண ஞானயோகாதயோபி அநாத்மாஶ்ரயாஹம் மமாத்யாஸஹானாத் தேகோ வசிஷ சிவ கேவலோஹம் ந மாதா பிதா வா ந தேவா ந லோகா ந வேதா ந யஜ்ஞா ந தீர்த்தம் ப்ருவந்தி சுஷுப்தோ நிரஸ்தாதி சூன்யாத்மகத்வாத் தேகோ வசிஷ சிவ கேவலோஹம் ந சாங்க்யம் ந சைவம் ந தத் பாஞ்சராத்ரம் न जैनम् न मीमांसकादेर्मतम् विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापराधि यद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेको वशिष्ठ शिवः तन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर् न विश्वो न वात्रैरसः प्राज्ञ को अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणाम् तुरीय सदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् अपिव्यापकत्वाधितत्वप्रयसेद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगतोच्छमेतत् समस्तम् तदन्यत् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न चैकम् तदन्यत् द्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवलत्वम् न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् ब्रवीमि कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् ब्रवीमि।
कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था श्रावण मास चल रहा है, जो लोग शिव जी को वेद के मंत्रों से अभिषेक करना चाहते हैं स्वयं, लेकिन आता नहीं हमें, उन लोगों के लिए संक्षेप में पाणिनि जी ने जो 14 सूत्र श्रवण किया भगवान शंकर के डमरू से, जो ये निकला था, इसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए आज मैं बोल रहा हूं दोबारा से। ऐ उण रील रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घढ़धश जब गढ़दश खफ छठ थ चट तव कपय शश सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। भगवान महेश्वर के द्वारा प्रकट होने से इसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। और जो श्लोक बोला था, जिस समय सनक सनंदन सनातन कुमार पाणिनि जी पतंजलि जी सब भगवान की आराधना करते हैं, शंकर जी ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, तो तांडव नृत्य और सायंकाल जो नृत्य करते हैं, प्रसन्न होकर के जब उन्होंने डमरू बजाया उस समय का ये श्लोक है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकामह सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला होने से ब्रह्म सूत्र, योग को प्रकट करने वाला योग सूत्र, भक्ति सूत्र, वैसे ही ये है शिव सूत्र। नृत्तावसाने नटराज राजु, प्रदोष काल में जब भगवान प्रसन्न होकर के नृत्य करते हैं, जब डमरू बजाते हैं, नटराज राज है भगवान शंकर, ननादो बजाया, क्या ढक्काम, ढक्काम मतलब डमरुम, डमरू बजाया, जैसे रावण ने नहीं कहा डमर 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 निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तू न शिव शिवम, वैसे ही है। और नटराज स्तोत्र लिखा है पतंजलि ने, चिदम्बरम हृदय नटम भजे, ऐसा करके वो कभी सुना देंगे आप लोगों को। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नौ और पांच बार डमरू बजाया, तो उसी में से ये नौ पांच कितने होते हैं, चौदह, यही ये चौदह सूत्र हो गए। किसने बजाया था, उद्धर तुकामह सनकादि सिद्धांत, सनक और आदि से ले लीजिए पतंजलि पाणिनि जी सबका, उद्धर तुकामह उद्धार करने की इच्छा से सबके कल्याण के लिए। और ऐसा नहीं केवल पाणिनि जी पतंजलि जी का कल्याण हुआ, आज इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो भी संस्कृत भाषा जानने वाले विद्वान लोग हैं सबके सब कल्याण के भाजन हो रहे हैं भगवान शंकर की कृपा से। उद्धर तुकामह सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इस तरह से चौदह सूत्रों के यहां पर विमर्शन हुआ, इसकी रचना हुई और उसी के अनुसार ये संस्कृत भाषा पाणिनि जी ने चौदह सूत्र के आधार पर, फिर पाणिनि अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी प्राचीन व्याकरण बोलते उसको, कुछ लोग अभी भी प्राचीन व्याकरण के पद्धति से ही पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण, लेकिन वो थोड़े कठिन है, सब लोग याद नहीं कर पाते, तो नव्य व्याकरण नाम रख दिया। व्याकरण आदि को समझने के लिए फिर उसी में भाष्य है, कात्यायन जी के वार्तिक है, पतंजलि के भाष्य है, महाभाष्य बोलते हैं। इस तरह से ये चौदह सूत्र आप यदि याद कर लोगे तो इन्हीं से वेद के मंत्र बनते, इन्हीं से संस्कृत भाषा बनती है, इन अक्षरों के अतिरिक्त कोई बाकी अक्षर दूसरा नहीं है। तो आप समझ लो पूरे वेद के मंत्रों से शिव जी का अभिषेक कर लिए, ऐसा समझ लेना। पहले चौदह सूत्र ठीक ठीक याद कर लेना, जब याद हो जाए तो आप जाओ, दो मिनट लगेगा शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने में, और इससे कितना बड़ा फल मिलता है ये आप लोगों ने सुना। दशश्लोकी की चर्चा चल रही है, करीब 21 तारीख से इसके ऊपर प्रारंभ हुआ था प्रतिपादन। हम भला क्या इसके ऊपर प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों का जो उच्छिष्ट है, उनका जो प्रसाद है, उसके माध्यम से हम लोग कुछ अपने जीवन में कल्याण के भागी बने, ये हमारे लिए एक पाथेय बने, उस दृष्टि से जो बन पड़ा वहां तक किया। और आज अंतिम दिन है इस सत्र में, आगे फिर जो भी सत्र में चलेगा, तो प्रथम श्लोक के अभी अवतरण ही चल रहा है, और पहले श्लोक की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या है, बाकी नौ श्लोक अपने आप सरल हो जाएंगे। जल्दबाजी तो नहीं है, जल्दबाजी करोगे भी तो जाओगे कहां, न तो यहां कोई ट्रेन छूट रही है, न कोई प्लेन छूट रहा है, तो धीरे धीरे जीवन में साधक हैं, हम साधना के मार्ग पे चलना है, जिस किसी भी तरह से शास्त्र की चर्चा हो और वे संस्कार हमारे अंदर दृढ़ हो, ये कोशिश करनी चाहिए। हमने पंचदशी पढ़ लिया, हमने अमुक पढ़ लिया, वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, आत्मबोध, तत्वबोध, जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं, बृहद ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी और बृहद प्रस्थानत्रयी, खंडन खंड, खाद्य, अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत लेश संग्रह, विवरण प्रमेय संग्रह, सब पढ़ लिया आपने। अब क्या करना है फिर? बोले ये जो मन है, ये मन जब तक परमात्मा में न मिल जाए, मन को परमात्मा में मिलाने का मतलब कैसा है? जैसे जल को जल में मिलाना, अग्नि को अग्नि में मिलाना, घटाकाश को महाकाश में मिलाना, इसी प्रकार से यहां पर भी जो जीवात्मा है वही क्या बन जाता है? तो परमात्मा होते हुए ही परमात्मा बनता है या अपरमात्मा परमात्मा बनता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वह प्राप्त ऐसा ही है, जल जल को प्राप्त हो गया, अग्नि अग्नि को प्राप्त हो गई, इसी प्रकार से यहां पर भी समझ लीजिए। तत्त्वमसी महावाक्य के द्वारा जब एक अखंडाकार वृत्ति बनती है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि जो वो वृत्ति बनती है वो कौन सी वृत्ति है? अखंडाकार वृत्ति, स्मरणात्मक वृत्ति, तो वृत्ति का भी केवल उपचार होता है, कोई वृत्ति वृत्ति नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि का नाम सुना है ना? असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये त्रिपुटी भासते रहते हैं, और असंप्रज्ञात में त्रिपुटी की समाप्ति ही असंप्रज्ञात है। जिस योग की बात की जा रही है, वशिष्ठ जी ने राम जी को भी बताया है, योग वशिष्ठ में आता है, और भी बहुत सारे यहां आचार्य उदाहरण दे रहे हैं। एतेन प्रमिति प्रमात्रोः महावाक्यार्थ बोधे भानम अपास्तम। तात्पर्य क्या निकला? षडविध तात्पर्य निर्णायक लिंग भी है। ये वेदांत की जो प्रक्रिया है ना, इसको याद करना फिर क्रम से समझना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो, फिर जो जो उदाहरण देते हैं, उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासा अपूर्वता फलम, संधि करके बोलेंगे तो उपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वता फलम, और इसको अलग अलग करेंगे तो उपक्रमोपसंहारौ अभ्यास अपूर्वता फलम। अर्थवाद और उपपत्ति को मिला के दो वचन हुआ, तो अर्थवादोपपत्ति च दीर्घिकार हो जाएगा। लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये जो लिंग है, पहचान है, किसके लिए? तात्पर्य निर्णय। कोई भी विषय प्रारंभ हो, जिस विषय से हम प्रारंभ करें उसी विषय पर उपसंहार हो, समापन हो, बीच में इधर उधर दृष्टांत भी जाएगा, दृष्टांत के माध्यम से लगता है कि विषयांतर हो रहा है, लेकिन दृष्टांत ऐसा हो जो दृष्टांत को समझाने में सहायक हो। कई बार वक्ता भी कुछ ऐसे दृष्टांत दे देते हैं जो मनोविनोद का प्रसंग होता है। लोग कहते हैं महाराज हंसाते बहुत हैं, वहां हंसाना उद्देश्य कम होता है। हां इतना जरूर है कि ऐसा दृष्टांत दे ताकि आप लोगों को नींद ना आवे, इतने गंभीर होकर के यदि हम प्रतिपादन करने लग जाएं तो लोग क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे। ब्रह्म जो है ना, सहजता ही ब्रह्म है। जब व्यक्ति दिन भर खड़ूस बन के रहता है ना, उसी को लाफिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता है, लाफिंग क्लब में जाना पड़ेगा। और लाफिंग क्लब में जब हंसाते हैं तो वहां झूठी हंसी होने पर भी धीरे धीरे कौन सी हंसी आती है, सच्ची हंसी आ जाती है। कुछ लोगों के हंसने का ढंग ही इतना बेढंग होता है कि उसकी हंसी को देख करके भी आपको हंसी आ जाएगी। और हंसी भी कई तरह के होते, देशी हंसी, विदेशी हंसी। देशी तो है जिसमें शरीर के रूंगटे खड़े हो जाए और नाभि से हंसी निकले, ठहाका मार के जो हंसना बोलते हैं ना, खिलखिला करके हंसना। और ये विदेशी हंसी जो है, मालूम है आप लोगों को बड़े धीरे धीरे, हाँ, और कहीं विशेष मेकअप आदि किया हो तो उधर बिगड़ जाए, उधर भी ध्यान रहता है, उसी चक्कर में खिल के नहीं हंस पाते, मेकअप न बिगड़ जाए। और कुछ लोग इसलिए नहीं हंसते कि हमारे दांत आदि न दिख जाए, कुछ लोग इसलिए भी नहीं हंसते कि हमारी पोल पट्टी न खुल जाए। कुछ का हंसना भी रोना जैसा होता है, भयंकर भद्दा। तो हंसे तो ऐसे हंसो जो आपके एक स्वाभाविक वृत्ति दिखाई दे उसमें। नहीं तो आनंद रामायण में कथा आती है, राम जी के दरबार में ना सब अचानक हंस पड़े और राम जी ने दंड देने के लिए कहा कि कोई भी सभा में हंसेगा नहीं। और बहुत उसमें लंबी चौड़ी कथा है, बाद में सुमंत्र जी ने कुछ ऐसी योजना बनाई, तब राम जी को समझ में आया कि हंसे बिना कोई रह नहीं सकता। तो सहजता पूर्वक चेहरे में जो ज्ञान होने के बाद बोलते हैं ना, मंद स्मित, ऐसी मुस्कान, न तो जोर से ठहाका मार के हंसना, न तो हमें विदेशी हंसी हंसना, सहजता पूर्वक जब देखो कभी भी चेहरे पे कोई मलिनता न दिखाई देवे, हमेशा कैसा हो, प्रसन्न वदनम। भगवान के भी किस स्वरूप का ध्यान करते, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। प्रसन्न वदन, आप फोटो खिंचवाते हो, कैसे फोटो खिंचवाते हो, यदि मुंह लटका भी है तो लोग क्या बोलते हैं, चीज। वो चीज क्या है, स्माइल को बोलते हैं चीज कि पनीर को बोलते हैं चीज। अब मुझे लगता है पनीर के नाम सुन के जैसे बैगन के नाम सुन के मुंह खराब होता है ना, पनीर के नाम सुन के बतीसी दिखती है। एक बार तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ओ कद्दू कोई खाने की चीज है, ऐसा एक बार मुंह लटका लेते है तो सब्जी वो भी खाते भी है। इसलिए वो फोटो खिंचाते समय कद्दू आदि का नाम नहीं देते, क्या बोलते, पनीर बोलो, चीज। हंसी आ गई, बोले हाँ ये फोटो ठीक है। और किसी से झगड़ा करते हुए, मुंह लटकाए हुए, रोते हुए फोटो खींचे तो आप क्या कहोगे, अरे ये फोटो डिलीट कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। हमेशा हम चाहते हैं सौम्य मूर्ति, जैसे भगवान के फोटो मूर्ति आदि हमें सौम्य चाहिए। रावण को मारते हुए राम जी की फोटो कोई घर में नहीं रखता, कंस को मारते हुए कृष्ण की फोटो कोई नहीं रखता। आया ना वो रामकृष्ण परमहंस जी, उनके फोटो किसी ने खींची तो दिखाया उनको, तो बोलते ही फोटो हमें चाहिए। बोले आप क्या करेंगे, बोले तुमने ये फोटो उस समय लिया, ये मेरा जो चित्र है, जिस समय मैं मां भगवती का ध्यान कर रहा था, तो इस फोटो को जब जब देखूंगा तो उस वृत्ति को बनाने में हमें आसानी होगी। तो आप जब अपने सौम्य मूर्ति को देखोगे फोटो को, तो जो आपका मुंह बिगड़ा भी होगा ना, तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूं जैसे फोटो में दिख रहा हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हो सहजता ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञानी के उठना बैठना चलना अर्जुन ने जो प्रश्न किया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थ बोला है समाधि में स्थित हो चुका है किम नाम समाधि संप्रज्ञात समाधि तो त्रिपुटी भास रही है और असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म स्वरूप में वो ब्रह्म साक्षात्कार जो कर चुके आत्माकार वृत्ति में जो हमेशा रहते हैं समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतः करणेन गृह्यते। शायद आचार्य का ही है विवेक चूड़ामणि में होगा। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु चित्त के अंदर जो भी मल थे सब के सब समाधि के द्वारा निर्धूत हो गए धो दिए गए साफ हो गया। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु निवेशितस्य निवेशितस्य चेतसः अपने चित्त को हमने निविष्ट कर दिया लगा दिया एकाग्र कर दिया निरुद्ध कर दिया किसमें आत्मनि अपने स्वरूप में आत्मा में और उस समय जो सुख होता है यत् सुखम निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवे न शक्यते वर्णयितुं गिरा गिरा मतलब वाणी के द्वारा वर्णयितुं न शक्यते उसको हम वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कैसा है वो स्वयं तद अपने द्वारा तद मतलब जो उसको सुख है अंतःकरणेन गृह्यते मनः प्रत्यक्चित्ते सविधम अवधायात् मरुतः प्रहिष्यत् रोमाणः प्रहिष्यत् रोमाणः बोलते ना पदच्छेद करेंगे तो प्रहिष्यत् रोमाणः प्रमद सलिलोत्संगित दृशः यदा लोक्या ह्लादम् ह्रद इव निमज्यामृतमयी दधत्यन्तस्तत्त्वम् दधति अन्तस्तत्त्वम् दधत्यन्तस्तत्त्वम् किमपि यमिनस्तत् किल भवान् हे भगवान भवान मतलब आप हे शिव जी की स्तुति की जा रही हे भगवान आप जो है यमिनः जो यमी संयमी है उनके द्वारा आप हृदय में उसी तरह से प्रकट होते हैं जैसे जल में डुबकी लगाने के बाद प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य यदा आलोक्य आह्लादम उस आह्लाद को आनंद का जब हम अवलोकन करते हैं उस समय हम पूरी तरह से उसमें ओतप्रोत होते डूब जाते हैं जैसे जल के अंदर डुबकी लगाने के बाद एक भी अंग आदि उसमें दिखाई नहीं देते बराबर हो गया पानी तो है पानी के अंदर चला गया अब ऊपर भी पानी अंदर भी पानी सर्वत्र जल ही जल है। इसलिए दृष्टांत दिया हृद इव निमज्यामृतमय जैसे हृद सरोवर में निमज्जन होकर के डूब करके वहां पर अनुभव होता है शीतलता का वैसे ब्रह्माकार वृत्ति में जो डूब चुके बहुत सारे उदाहरण है। एक हमें इस पर श्लोक याद आता है ये जो मन है ना मन एक क्षण के लिए भी लग जाए तो इतना बड़ा फल बताया है शास्त्रों में वो क्या है मालूम है एक नदी में नहाओगे तो दूसरी नदी का स्नान बाकी रह जाएगा गोदावरी में नहाओगे तो गंगा जी बाकी रहेगी गंगा जी में नहाओगे यमुना जी रह जाएंगी और गंगा यमुना के संगम में नहा भी लोगे तो फिर कावेरी कहां जाओगे तो बहुत दूर हो जाएगी।